यसाया अध्याय 14। बाबिल एक बादशाह के लिए एक ताना, क्योंकि खुदावंद याकूब पर रहम फरमाएगा, बल्कि वह इसराइल को भी बरगुजीदा करेगा और उनको उनके मुल्क में फिर कायम करेगा, और परदेसी उनके साथ मेल करेंगे और याकूब के घराने से मिल जाएंगे, और लोग उनको लाकर उनके मुल्क में पहुंचाएंगे, और इसराइल का घराना खुदाबंद की सरजमीन में उनका मालिक होकर उनको गुलाम और लोंडियां बनाएगा, क्योंकि वह अपने गुलाम करने वालों को गुलाम करेंगे और अपने जुल्म करने वालों पर हुकूमत करेंगे। और यूं होगा कि जब खुदाबंद तुझे तेरी मेहनत और मशक्कत से और सख्त खिदमत से जो उन्होंने तुझसे कराई राहत बख्शेगा, तब तू शाह बाबुल के खिलाफ ये मसल लाएगा और कहेगा कि जालिम कैसा हलाक हो गया और गासिब कैसा हलाक हुआ। खुदाबंद ने शरीरों का लठ यानी बेइंसाफ हाकिमों का असा तोड़ डाला, वही जो लोगों का कहर से मारता रहा और कौमों पर गजब के साथ हुक्मरानी करता रहा और कोई रोक ना सका। सारी जमीन पर आराम और आसाइश है, वह अचानक गीत गाने लगते हैं। हाँ, सनोबर के दरख्त और लुबनान के देवदार तुझ पर ये कहते हुए खुशी करते हैं कि जब से तू गिराया गया तब से कोई काटने वाला हमारी तरफ नहीं आया। पताल नीचे से तेरी वजह से जुम्बिश खाता है कि तेरे आते वक्त तेरा इस्तकबाल करे। वह तेरे लिए मुर्दों को यानी जमीन के सब सरदारों को जगाता है, वो कौमों के सब बादशाहों को उनके तख्तों पर से उठा खड़ा करता है। वह सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारी तरह आजीज हो गया? तू ऐसा हो गया जैसे हम हैं। तेरी शानो शौकत और तेरे साजों की खुश आवाजी पाताल में उतारी गई, तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ और कीड़े ही तेरा बालापोश बने। ऐ सुबह के सितारे, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा? ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं उत्तरी अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की तरह हूंगा। लेकिन तू पाताल में गढ़े की तह में उतारा जाएगा, और जिनकी नजर तुझ पर पड़ेगी तुझे गौर से देख कर कहेंगे, क्या ये वही शख्स है जिसने जमीन को लरजाया और ममलूकतों को हिला दिया, जिसने जहान को वीरान किया और उसकी बस्तियां उजाड़ दी, जिसने अपने गुलामों को आजाद ना किया कि घर की तरफ जाएं, कौमों के तमाम बादशाह सब के सब अपने अपने घर में शौकत के साथ आराम करते हैं, लेकिन तू अपनी कब्र से बाहर निकम्मी शाख की तरह निकाल फेंका गया। तू उन मकतूलों के नीचे दबा है जो तलवार से छेदे गए और गढ़े के पत्थरों पर घिरे हैं, उस लाश की तरह जो पांव से लताड़ी गई हो। तू उनके साथ कभी कब्र में दफन ना किया जाएगा, क्योंकि तूने अपनी ममलूकत को वीरान किया और अपनी रयत को कत्ल किया। बद किरदारों की नस्ल का नाम बाकी ना रहेगा, उसके फरजंदों के लिए उनके बाप दादा के गुनाहों की वजह से कत्ल का सामान तैयार करो, ताकि वह फिर उठकर मुल्क के मालिक ना हो जाएं और इस जमीन को शहरों से मामूर ना करें, क्योंकि रब्बुल अफवाज फरमाता है, मैं उनकी मुखालिफत को उठूंगा और मैं बाबुल का नाम मिटाऊंगा और उनको जो बाकी हैं बेटों और पोतों के साथ काट डालूंगा। ये खुदावंद का फरमान है। रब्बुल अफवाज फरमाता है, मैं उसे खार पुश्त की मीरास और तालाब बना दूंगा और उसे फना के झाड़ू से साफ कर दूंगा। रब्बुल अफवाज कसम खाकर फरमाता है, यकीनन जैसा मैंने चाहा वैसा ही हो जाएगा और जैसा मैंने इरादा किया है वही वजूद में आएगा। मैंने अपने ही मुल्क में असूरी को शिकस्त दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे पांव तले लताड़ूंगा, तब उसका जुआ उन पर से उतरेगा और उसका बोझ उनके कंधों पर से टलेगा। सारी दुनिया के जरिए यही है और सब कौमों पर यही हाथ बढ़ाया गया है, क्योंकि रब्बुल अफवाज ने इरादा किया है, कौन उसे बातिल करेगा? और उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोकेगा? जिस साल आखज बादशाह ने वफात पाई उसी साल ये बारे नबूवत आया, ऐ कुल फिलिस्तीन तू इस पर खुश ना हो कि तुझे मारने वाला लठ टूट गया, क्योंकि सांप की असल से एक नाग निकलेगा और उसका फल एक उड़ने वाला आग का सांप होगा। तब गरीबों के पहलोठे खाएंगे और मोहताज आराम से सोएंगे, लेकिन मैं तेरी जड़काल से बर्बाद कर दूंगा और तेरे बाकी लोग कत्ल किए जाएंगे। ऐ फाटक तू वावेला कर, ऐ शहर तू चिल्ला, ऐ फिलिस्तीन तू बिल्कुल गुदास हो गई, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसके लश्करों में से कोई पीछे ना रह जाएगा। उस वक्त कौम के कासिदों को कोई क्या जवाब देगा कि खुदाबंद ने सियोन को तामीर किया है और उसमें उसके गरीब बंदे पनाह लेंगे।